الذم المن في جنات يتساءلون عن المجرم ما سلككم في سقر جہنمیوں کو جنتیوں کے سامنے کیا جائے گا. اس کے اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ اس کے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے تو جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہونا بھی آسان نہیں ہے. اس جہنم کی لپٹ اور گرمی میلوں تک جاتی ہے, میلوں تک, برسوں کی مسافت تک جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس میں سے پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے سامنے ان کو کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, جب چاہے جس کو سامنے کر دے اور فاصلے ختم کر کے اس کو سامنے کر دیں گے. وہ پوچھیں گے فی جناتین یتساءلون عن المجرمین, جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, سقر کا مطلب جہنم, تم کس لیے, کس عمل کی وجہ سے جہنم میں آئے ہو, کیا وجہ بنی. ما سلککم فی سقر, قالو وہ کہنے لگے, کہیں گے لم نکمل المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. بالکل اپنی زبان میں خود کہہ رہے ہیں, یک زبان ہوگی, قالو جمع ہے, سب مل کے کہیں گے لم نکمل المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو آج قربانی کرنے والوں کو یہ بتائیں کہ سورہ مدثر کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ جو بے نمازی ہے اس کو جہنم میں جا کے وہ یہ بول رہا ہوگا. اور ظاہر سی بات آگے ان آیات میں یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کا بھی انکار کرنے والے تھے, لیکن آج کے مسلمان الحمدللہ یہ عجیب ادھورے ہیں, عجیب ادھورے ہیں. عشاء پڑھتے ہیں, فجر نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا تھا منافقین کی علامت کہ جو ان پر عشاء اور فجر بھاری ہے, عشاء پڑھتے ہیں فجر نہیں پڑھتے, کلمہ پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. یہ عجیب قسم کی مخلوق پیدا ہوئی ہے, ایسی مخلوق پہلے نہیں ہوتی تھی. نماز چھوڑنے کا تصور بھی صحابہ تابعین تبع تابعین میں تصور بھی نہیں تھا. مالک ابن دینار کا جو قصہ لکھا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں تھے اور اس وقت اللہ تھی گناہ, یعنی عام گناہگار زندگی تھی اسی حالت میں, لیکن نماز پڑھی انہوں نے. شرابی بھی اس وقت کا نماز پڑھتا تھا. آج کل کے شریف لوگ بھی نماز کو ایسی سمجھتے ہیں, ہاں پڑھ لینا چاہیے, ابھی ٹائم نہیں ہے, جب میرے پاس وقت ہوگا, بوڑھے ہو جائیں گے خوب وقت ہوگا تو پھر مسجد میں ہی رہیں گے, اللہ اللہ کرتے رہیں گے. حالانکہ کرنا اس وقت بھی نہیں ہے, یہ صرف شیطان تسلیاں دیتا ہے, طفل تسلی, جیسے بچوں ہاں بیٹا لا دیں گے تمہیں, یہ چیز لا دیں گے, ایسا لا دیں گے ویسا لا دیں گے, اس کو طفل تسلی کہتے. شیطان بھی اسی طرح تسلیاں دیتا ہے کہ ہاں تم اب ہم تھوڑے اور صحیح ہو جانا, پھر ایسے اللہ والے بنیں گے. موقع ہی نہیں ملتا. اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے ہیں ہم 40 سال کے بعد ہم ایسے ہو جائیں گے, دنیا اور پکڑ لیتی ہے, ایسا پکڑتی ہے, یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں ہے, ہم جب کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں, جو اختیار میں ہے اس کو کرنا شروع کر دو. فرائض واجبات ذکر تلاوت یہ شروع کر دو. یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ مسجد سے نکلے نہیں, بس اللہ اللہ ہی کریں, کس نے کہا ہے. جو ضروریات دین ہے اس کو خود شروع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر تلاوت کا اہتمام, یہ اس اللہ کا قرب دلا دے گا. باقی کاروبار بھی کرو, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو, دل میں یار ہو, کار بھی ہو کاروبار بھی ہو. تو آج قربانی کرنے والے بڑے اپنے آپ کو, اچھی بات ہے, لیکن بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بہت دیا ہے, ہم قربانی کر رہے ہیں. اور جو نمازی بازے ایسے بہت سے نمازی ہیں ان علاقوں میں جو بیچارے قربانی نہیں کر پاتے, ان کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے, وہ نہیں ہے اگر ان کو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. جو قربانی نصاب نہ ہونے سے قربانی نہ کرے, حج کتنے بزرگ ایسے چلے گئے انہوں نے حج نہیں کیا, تو حج نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا. جب تک مال اتنا نہ ہو, اس کے پاس اسباب نہ ہو, تو حج نہ کرنا گناہ نہیں ہے. جب اسباب اور مال اسباب ہو اور پھر بھی نہ کرے, پھر ہے گناہگار ہے, پھر گناہگار. اسی طرح قربانی بھی وہ فرمایا جس کے پاس وسعت ہے اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی جب وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو بتائیں, ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں, عرب کے مشرکین بھی یہ سمجھتے تھے, مشرکین مکہ. یہ دیکھو فتو فقیر لوگ, کھانا ملتا نہیں ہے, कपड़े इनके पास नहीं है, ये हमें हमें कहते हैं ऐसी जन्नत मिलने वाली है और ऐसा ऐसे हालात आने वाले, और हमें देखो हम अगर ऐसे होते तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की ठाट बाट देता। ये जनाब ये है, फिरौन को भी बहुत अय्याशी वाली जिंदगी मिली थी, नमरूद को भी और शद्दाद को भी। तो अय्याशी वाली जिंदगी अल्लाह ताला की महबूबियत की अलामत नहीं है, बल्कि अक्सर मर्दूदियत की अलामत होती है, अक्सर मर्दूदियत की। इसी वजह से वो गाफिल हो जाते हैं, वो ये समझते थे हम तो बैतुल्लाह की खिदमत करते हैं और हम हमें अल्लाह ने अच्छा खासा नवाजा हुआ, तो अगर हम अल्लाह के से दूर होते, अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें क्यों नवाजता। ये शैतान यहाँ पे ये डालता है। इसी तरह आज के दुनियादार भी समझते हैं हमें तो अल्लाह ने बहुत दिया, हम अगर कोई गरीब हैं, हम अगर हमें जब अल्लाह अगर हमें ना चाहता तो हमें क्यों दुनिया देते। तो दुनिया देना कोई दुनिया देना कोई अल्लाह की महबूबियत और पसंदीदगी की अलामत नहीं। दुनिया अक्सर अपने दुश्मनों को दी, उस जमाने में भी अबू जहल और अबू लहब ऐश करते थे, ठीक है बहुत ज्यादा माल इन लोगों के पास भी नहीं था, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में काफी फराख हाली थी, उनके अंदर खुशहाली थी। मुसलमान अक्सर फकर व फाका में गुजारा कर रहे थे, ये उससे अंदाजा लगाया जा सकता है गजवात में मुसलमान किस तरह जाते थे, दो घोड़े चंद ऊंट और चंद तलवारों के साथ, और वो पूरे लाओ लश्कर के साथ आते, पूरे जमा होके जरा पहने हुए लाओ लश्कर के साथ। तो अल्लाह ताला की मदद थी कि मुसलमानों को अल्लाह ताला फतह नसीब, जमीनी नक्शा नहीं था, जमीनी अल्लाह ताला जो कहते तुम हमारे लिए चलो तो सही, आगे मदद हम करेंगे तुम्हारी, तुम हमारे लिए चलो तो सही, आगे तुम्हारी मदद हम करेंगे। तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि भाई सारे मजे यहीं कर लोगे, दिल नहीं चाहता, फला नहीं होता। हाँ इन लोगों में भी तो आपस में इख्तलाफ है, मैं कहता हूँ जहां नमाज पढ़ना चाहो वहां पढ़ लो, हमने कहीं मना नहीं किया, आपस में अख्तर जहां से दवा लेना है ले लो, बीमार हो कहीं ना कहीं से तो दवा लोगे, नहीं एलोपैथ वाला जो होम्योपैथिक को बुरा कहता है, होम्योपैथिक वाला तिब्ब यूनानी को एक दूसरे को बुरा कहते हैं, तो हम ये हम कैसे इलाज कराएं, कौन सा सही है हमें क्या पता। भाई जुमे जो रास आ रहा है तुम वो करा लो, जान बचानी है, जो रास आ रहा है जिस तरह इलाज के लिए, इलाज जिस्मानी के लिए हम फौरन कोई ना कोई तबीब डॉक्टर करते हैं, इसी तरह इलाज रूहानी के लिए हमें भी राबता करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर ये रूह जिस्म को तो मरना ही है, कुछ भी नहीं हुआ, 90 साल की उम्र हो गई, उम्र पूरी हो गई, 95 साल 100 साल बुढ़ापा खुद कहते हैं कि पहले आदमी बुढ़ापे की कब्र में जाता है फिर जमीन की कब्र में जाता है, ऐसा बेयारो मददगार हो जाता है, बेबस खुद चाहता है कि अल्लाह मुझे बस जल्दी आसानी कर दे, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि वहां दूसरा जिस्म दिया जाएगा, वहां ये जिस्म नहीं होगा बुढ़े आदमी का जिस्म 90-100 साल जिसे चला ना जाए, वहां दूसरा जिस्म दिया जाएगा, जन्नत में दूसरा जिस्म दिया जाएगा। जन्नत में अगर ये जिस्म हो तो फिर ये कैसे गुजारा करेगा, इतना खाना पीना है ये जिस्म गुजारा नहीं कर सकता, वहां का जिस्म भी अलग है, जन्नतियों को अलग जिस्म दिया जाएगा, जहन्नमियों को अलग जिस्म दिया जाएगा, वो ऐसा होगा कि वो जले, वो जिस्म जलेगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से बनता भी रहेगा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन्हुम। और ओहद पहाड़ के बराबर बाजों के जो है इतने बड़े बड़े इतना जिस्म दिया जाएगा, ताकि जितना ज्यादा बड़ा जिस्म होता है इतनी ज्यादा तकलीफ होती, और जन्नतियों को अलग अपना नया जिस्म दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसको कयास किया नहीं जा सकता, ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। यहाँ तो जो हमारा खिताब तो उससे जो ईमान लाए, जो ईमान नहीं लाए कलमा नहीं पढ़े उससे तो हम बात करने के काबिल ही नहीं है, वो तो कहेगा तुम अपने पहले मुसलमानों को तो सही कर लो, बाद में हमारे पास आना, तुम्हारे मुसलमान सारे रोजा रखते सारे नमाज पढ़ते, जब करने लगे ना फिर हमारे पास आना, तुम हमें क्या दावत देते हो, तुम्हारे अंदर कैसी कैसी खराबियां हैं, जो अक्सर ऐसी खराबियां मिलावट रिश्वत करप्शन अपनों को खाना, उधर थोड़ी महंगाई होती इधर और ज्यादा महंगाई कर देते, अपनों को लूटना। आप सामान लेने के लिए जाएं, आइए माशाल्लाह आप तो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं चुनाए। एक साहब उस दिन बता रहे कोई बक्सा लेने के लिए गए, इतना चाय तक पिलाने के लिए तैयार है, नहीं चाय वाय का वक्त नहीं दिया आप, उन्होंने दे दिया उस दिन तो बहुत ले गए, तो उनको कुछ मसला नजर आया उसमें, अब वापस करने गए, जिसको कहते हैं हमारे उर्फ में आंखें, उसने यहां चढ़ा ली, जैसे पहचान ही नहीं रहा, दो दिन एक दिन के बाद अब क्या हो गया, अब वो चाय पिलाने वाली सूरत तो गई, अब तो वो देखना, क्योंकि वो वापस करने के लिए आए थे, अब उसको बिल्कुल ही अखलाकियात तब्दील हो गए, अब मैनर्स खत्म हो गए, एटीट्यूड चेंज हो गया, अब क्या हुआ, अभी आप ठीक है वापस करना है, आप जो आपका हो रहा है उसके बदले में उन्होंने कहा कि छोटा बॉक्स उसने दिया और वो भी बड़े नखरों से दिया, देने का उसका दिल नहीं था। कहते भाई बाद में ले आना, अभी हमारे पास नहीं है, बाद में ले आना, फिर हम देखेंगे। फिर एक हफ्ते तक उसको दौड़ाते हैं। ये अखलाकियात, जब लेने आया था तो उसके अखलाकियात ऐसे थे कि जैसे वो जो है बहुत ही उस पर फिदा है, बहुत ही पुरानी रिश्तेदारी निकल आई है। ये है खुद गर्दी, सेल्फिश हो गए हम लोग। इस वजह से ये मुआशरे में सिर्फ ऊपर से तो है, अंदर भी नीचे भी खराबी है, ऊपर की खराबी। एक दुनिया देखे शख्स ने मुझसे कहा कि मछली हमेशा सर की तरफ से खराब होती है। ये बात सही है कि ऊपर से खराबी आ रही है, लेकिन नीचे तक भी आ रही है। कौन से इदारे में करप्शन नहीं है? हर आदमी समझता है इसको रिश्वत और इन चीजों को हलाल समझ, अपना हक समझा जा रहा है, अपना हक समझा जा रहा है। आप जाए कहें भाई हमारे बहुत से ऐसे सरकारी इदारे हैं, फेडरल कैपिटल एरिया वगैरह में हम रहे हैं, वहां से पहले जमाने में जब शुरू में आए थे तो लोग आते थे काम करने के लिए, कोई रंग करने आ रहा है, कोई बिजली का मसला हो गया, पंखे का, वहां से आते। अब आप जाके पकड़ के लाए, अब तो पता नहीं क्या हुआ होगा, 15 साल तो हमें हो गए छोड़े। अब वो कहता है पहले हमें पैसे दो फिर हम काम करें। तुम्हें सरकार पैसा नहीं देती? तो सरकार देती है, हम नहीं करेंगे तुम अगर पैसे नहीं दोगे। सरकार अलग दे रही है और आम आदमी अलग देगा तब काम होगा। उस बंगी आके अगर गटर खोलेगा उसको पैसे देने होंगे, वरना वो आइंदा नहीं आएगा। ये किसका कसूर है? ये भी हुक्मरानों का कसूर है। ये तो इसमें तो हमें अपनी हालत देखनी चाहिए। सड़क को तोड़ना, तंबू लगा लिया, इतना बड़ा किला उसमें डाल दिया और वो टूट गई, टायर जला दिया, फिर ये किसका कसूर है? ये भी हुकूमत का कसूर है। इसमें हमें देखना चाहिए ये किसकी मिल्कियत है, आपने कैसे टायर जलाया उसके ऊपर और कैसे इतना बड़ा उस पर किला ठोका कि वो सड़क थोड़ी सी टूटी अब टूटने लगी, पानी जमा हुआ अब टूटने लगी। ये सब भी तो आखिर हमारा कसूर है, ये सब हमारा आवाम का कसूर है। लिहाजा ये अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।